अलग अलग रहकर सीखें उतनी सफाई नहीं कर पाती जितनी कि उन्हें मिलाकर बनने वाली बुहारी द्वारा संभव होती है। ठीक इसी प्रकार अलग अलग की जाने वाली उपासना व्यक्ति एवं वातावरण को परिष्कृत करने में जितनी उपयोगी सिद्ध होती है, उसकी तुलना में एक संकल्प सूत्र में आबद्ध होकर एक तत्वावधान में की गई साधना का प्रभाव कहीं अधिक होता है। सामूहिक प्रयास, सत्संग, कथा, कीर्तन, यज्ञानुष्ठान, परिक्रमा, तीर्थयात्रा आदि की क्षमता सामान्य गणना की तुलना में कहीं अधिक होती है। शब्द शक्ति का संयुक्त समावेश कितना प्रभावी होता है, इसका एक प्रमाण तब मिलता है जब किसी भारी वजन को ऊपर उठाने या आगे धकेलने के लिए मजदूर लोग नारा लगाकर एक साथ अपनी सामर्थ्य को केंद्रित करते हैं। प्रातः सायं मंदिरों में होने वाली आरती, विद्यार्थियों की सामूहिक प्रार्थना में भी यही विशेषता रहती है कि संयुक्त मन, संयुक्त भाव प्रवाह से उत्पन्न शब्द शक्ति उच्चारणकर्ताओं से लेकर अन्य असंख्यों के समग्र वातावरण को प्रभावित करने में विशेष रूप से फलप्रद होती है। ध्वनिशक्ति के संदर्भ में जो शोध कार्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में चल रहा है, उससे सामूहिक उच्चारण की प्रतिक्रिया के संबंध में नए तथ्य सामने आए हैं। एक निष्कर्ष यह निकला है कि संसार के 50% व्यक्ति भी यदि सक्रिय हों तो वे शब्दों तथा ध्वनियों द्वारा 3 घंटे में 6000 खरब वॉट विद्युत शक्ति पैदा करते हैं, जो भारत में पैदा की जाने वाली कुल ऊर्जा से 8 गुना ज्यादा है। संपूर्ण विश्व में इस ऊर्जा से घंटों प्रकाश किया जा सकता है। साधारणतया वाणी का उपयोग बातचीत के एवं जानकारियों के आदान प्रदान हेतु ही होता है। यह उसका अति स्थूल प्रयोग है। शब्द की सूक्ष्म शक्ति और उसके उपयोग की विधि को जाना जा सके तो उससे असंख्य गुना लाभ उठाया जाना संभव हो सकता है। शब्द के साथ जुड़ा विद्युत प्रवाह कितना प्रचंड है, इसे पदार्थ विज्ञानवेत्ता जानते हैं और उसी ज्ञान के आधार पर रेडियो, टेलीविजन, राडार आदि यंत्रों का निर्माण करते हैं। आज इसी शब्द शक्ति के आधार पर शरीर की विभिन्न गहन परतों में छिपी व्याधियों का निदान भी संभव है। इकोइंसेफेलोग्राफ द्वारा प्रतिध्वनि प्राप्त कर मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, तो उसी तरह इकोकार्डियोग्राफ द्वारा हृदय की व्याधियों का। आवाज मुंह से निकलने वाली हवा मात्र ही नहीं है, वह एक शक्तिशाली ऊर्जा एनर्जी की तरह है। उच्चारित शब्द कान व त्वचा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कान एक प्रकार का माइक्रोफोन है जिसमें 0-20,000 आवृत्तियों का प्रवेश होते ही एक धारा प्रवाहित होने लगती है। सीधे मस्तिष्क तक पहुंचकर यह शरीर के सभी भागों एवं ग्रंथियों को क्रियाशील बना देती है। मनुष्य के शरीर, विचारणा एवं भाव स्थिति की त्रिविध क्षमताओं का समन्वय करके जो विद्युत प्रवाह प्रस्तुत होता है, उसकी क्षमता को अध्यात्म तत्ववेता ने समझा है और उसी आधार पर मंत्र विद्या का आविष्कार किया है। उच्चारित शब्दों का श्रोता के मस्तिष्क पर 2 तरह से प्रभाव पड़ता है। पहला, मुख से शब्द निकलने से पूर्व वक्ता के मस्तिष्क से कुछ उसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय लहरें निकलती हैं जिन्हें श्रोता का मस्तिष्क ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। दूसरा, उच्चारित शब्द वायुकंपनों के माध्यम से विद्युत संचार के रूप में कणरंध्रों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचकर विभिन्न आवेग उत्पन्न करते हैं। अपमान सूचक शब्द कहने से दूसरों को किस तरह क्रोध आता है, फलस्वरूप अनर्थ होता है, इसका उदाहरण द्रौपदी के थोड़े शब्दों से महाभारत का हो जाना है। दहखद शोक संताप की घटना सुनकर कैसा बुरा हाल हो जाता है। भावनाओं को उभारने तथा तरंगित करने का काम संगीत कितनी अच्छी तरह करता है, यह सर्वविदित है। मंत्र विज्ञान द्वारा समस्त सूक्ष्म जगत को प्रभावित करना संभव है। सितार के तारों पर क्रमबद्ध उंगलियां रखने से जिस तरह विभिन्न प्रकार की सुलहरियां निकलती हैं, उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम रहने से उसमें भी विशेष प्रकार के विशेष शक्तिशाली कंपन उत्पन्न होते हैं। मंत्रों में अक्षरों के क्रम तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ, तालु, दांत, होठ, मूर्धा आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चारण होता है, उनका सीधा संबंध मानव शरीर के सूक्ष्म संस्थानों से है। शतचक्र उपत्यकाओं एवं दिव्य नाड़ियों ग्रंथियों का एक सूक्ष्म संस्थान है जिनमें हमारे मुख्यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जब मंत्र गुम्फनों का प्रभाव उक्त संस्थानों पर पड़ता है, तब एक अतिरिक्त शक्ति तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है जो मंत्र विज्ञानी को लाभान्वित करता है, उसकी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाता है। जब वे कंपन बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं। ये कंपन सूक्ष्म जगत में अभीष्ट परिस्थितियों का सृजन करते हैं और व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता हो तो उस पर भी असर डालते हैं। भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में शब्दों की इन्हीं प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर विविध शब्द प्रक्रियाओं का विधान किया गया है। आज के वैज्ञानिक युग में यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वार या स्नायविक के अंतर्गत आता है। इसी शब्द शक्ति का उपयोग करके पिछले दिनों कनाडा के उत्तरी भाग में 1000 वर्ग मील के क्षेत्र में सोवियत रूस द्वारा रोगवर्धक तरंगे तनाव डिप्रेशन, आत्महत्या की वृत्ति देखने में आई। विश्लेषण करने पर मालूम हुआ कि किसी स्थान विशेष से तरंगे छोड़ी जा रही हैं, जो किन्हीं निश्चित आवृत्तियों में होने से मानसिक क्षमताओं पर ऐसा प्रभाव छोड़ रही हैं। इस तरह शब्द शक्ति का दुरुपयोग कर साउंड वार भी आरंभ हो गया है। दूसरी ओर चिकित्सकों ने ध्वनि विज्ञान का सहारा लेकर साउंड थेरेपी नामक एक नई ही चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया है, जिससे शरीर के विभिन्न भागों में दर्द आदि कष्टों का इलाज किया जाता है। ध्वनि के कंपनों द्वारा परमाणु को सूक्ष्मतम भागों में विभाजित करना अब संभव है। इन सबके मूल में हमारे ऋषि मनीषियों द्वारा प्रतिपादित मंत्र शक्ति है, जिसमें ध्वनि विज्ञान का आश्रय लेकर सूक्ष्म संस्थानों व वातावरण को प्रभावित किया जाता है। पाश्चात्य देशों में शब्द शक्ति के रूप को सम्मोहन, हिप्नोटिज्म और आत्मा परामर्श ऑटोसजेशन की संज्ञा प्रदान की गई है। प्रसिद्ध रूसी मनोवैज्ञानिक आईवी पावलोव ने शब्दों को अत्यंत शक्तिशाली अनुकूलित प्रतिवेद उत्तेजक कंडीशन रिफ्लेक्स की संज्ञा दी है। शब्द शक्ति का महत्व वैज्ञानिक जानते हैं व उसे उपयोग में भी अब लाने लगे हैं। यदि यह सब संभव है तो मंत्र विद्या की सामर्थ्य को समझकर हम उसका समुचित उपयोग कर भौतिक उन्नति से कम नहीं बल्कि कई गुनी अधिक लाभदायक आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह शब्द शक्ति तब और भी अधिक प्रखर हो उठती है जब उसका भावनात्मक तारतम्य एवं उच्चारण का प्रवाह सामूहिकता को अपना ले। वेद मंत्रों को सामगान के स्वर क्रम में गाने वाले उद्गाता अपने उपक्रम से चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करते हैं। यज्ञानुष्ठानों में भी यही शब्द सहकार एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है और उसका प्रभाव भी असाधारण ही होता है। तथ्यों से स्पष्ट है कि साधना को शक्ति देने के लिए उसमें सामूहिकता का समावेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एकाकी भजन एकाकी परिणाम ही उत्पन्न कर सकता है, किंतु सामूहिक साधना का प्रभाव दूसरों को प्रकाश, प्रोत्साहन एवं अनुकरण की उमंगें प्रदान करता है। वातावरण में उपयोगी प्रवाह उत्पन्न करता है। अपना निज का लाभ भी अपेक्षाकृत अधिक ही संपादित होता है। एकाकी यात्राएं कांटे नहीं कटती, पर यदि उनमें कई लोगों का समूह जुड़ जाता है तो साथ साथ ही हंसते बोलते, खाते पीते, गीत गाते रास्ते में कितना आनंद आता है, यह कोई भी तीर्थयात्री अच्छी तरह समझ सकता है। सुरक्षा सहायता के अनेक लाभ तो उसमें अनायास रहते ही हैं। रामायण, भागवत, गीता पाठ आदि अनेकों लोग करते ही रहते हैं, पर उसी उपचार को सब लोग एक स्थान पर बैठकर एक संयुक्त संकल्प के अंतर्गत योजनाबद्ध होकर करें तो उसका नाम पारायण हो जाता है। रामायण पारायण, गीता पारायण, भागवत पारायण आदि की विधि व्यवस्था देखने में ही उत्साहवर्धक और आकर्षक नहीं लगती, वरन उसका प्रभाव भी पाठ करने वालों पर होता है। सूक्ष्म जगत की हलचल भी उससे प्रभावित होती है। अखंड पाठ, कीर्तन, सहगान, सहपाठ आदि के धर्मानुष्ठान भी इसी दृष्टि से किए जाते हैं। होली श्रावणी जैसे पर्व, विवाह यज्ञोपवीत जैसे उत्सव, सहभोज, प्रीतिभोज आदि के पीछे भी यह सामूहिकता के उभार की दृष्टि ही प्रधान रूप से काम करती है। मनुष्यों के एक दिशा में प्रवाहित होने वाली मानसिक धाराएं जब मिलती हैं तो उनका सूक्ष्म जगत में एक प्रवाह बन जाता है। यही उपक्रम सामूहिक धर्मानुष्ठानों, पर्वों पर एकत्रित जनसमूह से भी संभव है। उस संयुक्त भाव शक्ति से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे अपने साथ अनेकों को साथ लेकर आंधी की तरह आसमान में उड़ती दिखलाई पड़ती हैं। सूक्ष्मदर्शी जानते हैं कि जनसमुदाय की भावभरी मनःस्थिति जब कभी एकत्रित होती है तो उसकी प्रतिक्रियाएं असाधारण प्रतिफल एकत्र करती हैं। पुलों पर चलते समय मिलिट्री के जवानों को कदम न मिलाने का निर्देश है, क्योंकि सामूहिक ताल की शक्ति से पुल ध्वस्त हो सकते हैं। होली के अवसर पर सामूहिक गायनों से निर्जन एकांत स्थल भी प्रफुल्लता से ओतप्रोत हो उठते हैं। प्रस्तुत महापुरुष चरणों से ब्रह्मांड में व्याप्त कुसंस्कारों के शमन और शक्ति आकर्षण की एक ऐसी विज्ञानसम्मत प्रक्रिया उत्पन्न होगी, जिससे निकटवर्ती समय में ही मानवीय प्रगति और उसकी सुख शांति की परिस्थितियां खींचती हुई चली जाएंगी। वस्तुतः युग की अपनी कोई सत्ता नहीं है, वह मात्र घटनाओं का अच्छे बुरे सामूहिक आचरण का इतिहास होता है। यदि वह संस्कार आकर्षित किए जा सके तो युग परिवर्तन की आवश्यकता स्वचालित प्रक्रिया की तरह अपने आप पूर्ण होती चली आएगी। अवतारों ने इसी तथ्य को पहचाना था, अथवा यह कहें कि उन्होंने सही समय पर अवतार लिया, यह दोनों तथ्य एक ही हैं। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से यही प्रज्ञावतार का समय है, अतः प्रस्तुत प्रेरणाओं को लोकमंगल की सनातन परंपरा का ही अंग मानना चाहिए। इन दिनों जो यज्ञों की व्यवस्थाएं देश भर में हो रही हैं उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, वे इस पुरश्चरण का अंग मात्र हैं। जप का दशांश हवन करने का विधान है। साधना विज्ञान के इसी पक्ष का स्पर्श कर 25 कुंडीय यज्ञों की श्रृंखला चलाई गई है। इन्हें महापुरश्चरणों का स्थानीय समापन समझना चाहिए। प्रधानता महापुरश्चरण की ही है, अतएव उसमें अधिक से अधिक लोगों को अधिक समय देकर सम्मिलित होने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। यह पुस्तक जिन हाथों में पहुंचे उन्हें तो इसे युगांतरीय सत्ता का प्रत्यक्ष आमंत्रण मानकर उसमें सम्मिलित होना चाहिए। गायत्री और यज्ञ का युग्म है। दोनों की प्रगति और प्रेरणा एक जैसी है। दोनों का प्रवाह एक ही दिशाधारा में बहता है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता कहा गया है। दोनों में एक रूपता तो नहीं है, पर एकता अवश्य है। दोनों को एक प्राण दो शरीर कहा जा सकता है। गायत्री उपासना में भी एकाकीपन नहीं है। उसका स्वरूप और प्रयोग इस महामंत्र के नह शब्द में छिपा हुआ है। नह का अर्थ होता है हम सब। सद्बुद्धि की सविता देवता से याचना करते समय साधक अपना उद्देश्य स्पष्ट करता है और कहता है कि यह अनुदान मुझ अकेले को देने से काम न चलेगा। बात तो तभी बनेगी जब यह अनुकंपा हर किसी को प्राप्त हो। जिस तरह परिवार का मुखिया स्वस्थ हो पर शेष घर वाले बीमार हों, तो मुखिया की स्वास्थ्य सुरक्षा भी उसे किसी तरह की सुख शांति प्रदान न कर सकेगी। विश्व व्यवस्था भी ऐसी ही है जिसमें सुख सुविधाएं परस्पर विभक्त होनी चाहिए। इस तरह की भावनाएं अपने आप में ही प्रसन्नतादायक होती हैं, व्यवहार की तो कल्पना कठिन है। यज्ञ विशुद्ध रूप से सामूहिक विधि व्यवस्था है। उसमें होता, यजमान, पत्नी, ब्रह्मा, आचार्य, अध्वर्यु, उद्गाता आदि की प्रमुखता रहती है। इसके अतिरिक्त स्वस्तिवाचन, देवपूजन, पूर्णाहुति, भस्म धारण, घृत अवघ्राण, क्षमा प्रार्थना, आरती, प्रदक्षिणा आदि में अनेकानेक अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। जलयात्रा से लेकर कुंड मंडप निर्माण तक की अनेक क्रिया प्रतिक्रियाएं तथा प्रयुक्त होने वाली अनेकानेक वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें एक व्यक्ति के बलबूते पर नहीं संजोया जा सकता है। उस पूरी प्रक्रिया में आदि से अंत तक सामूहिकता का ही समावेश है। वह पुण्यकृत्य समूचे वायुमंडल का, वातावरण का परिशोधन करने के लिए किया जाता है। अपनी परिश्रम की कमाई को अग्निहोत्र के माध्यम से वायुभूत बनाकर जनकल्याण के लिए बिखेर देना, यही तो यज्ञ है। इसमें लोकहित ही प्रधान है। जहां परमार्थ होगा, वहां प्रकारांतर से स्वार्थ तो बिना प्रयत्न के ही सद्धता चला जाएगा। महाराष्ट्र में यूं गणेश चतुर्थी को हर वर्ष जहां तहां पूजा पाठ तो होते थे और घरों में गणेश प्रतिमा की अभ्यर्थना भी होती थी, पर उसका वैसा रूप कहीं नहीं था कि संगठित प्रयासों का आश्रय लिया जाए। लोग एकत्रित होकर अपनी संयुक्त शक्ति का अनुभव करें। ऐसी अनुभूति यदि हो सके तो जनशक्ति को जागृत होने और दिशा विशेष में चल पड़ने का अवसर मिल सकता है। लोकमान्य तिलक ने जन मनोविज्ञान के सूक्ष्म तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान परिस्थितियों में जनजागरण का उपयुक्त उपाय यही हो सकता है कि गणेश पर्व की प्राचीन परंपरा को नए आधार पर गठित किया जाए और उस धर्मोत्सव के माध्यम से लोक चेतना में ऐसा उभार लाया जाए जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए अभीष्ट भूमिका तैयार करने का माध्यम बन सके। तिलक ने गणेश उत्सव का नए सिरे से संचालन किया। उसमें प्रगतिशीलता और संगठन के नए तत्वों का समावेश किया। वे आयोजन थे तो धर्मोत्सव ही, पर उसमें रूढ़िवादी हुल्लड़ भर मच जाने जैसी निरर्थकता नहीं थी। समय, शक्ति और साधनों का अपव्यय न होने देकर उत्पन्न हुए उभार को भविष्य के लिए आशा का संचार करने वाली दिशा में नियोजित किया गया। फलतः सारा महाराष्ट्र उन उत्सवों के माध्यम से साहस भरी तरंगों से अनुप्राणित हो उठा। उन दिनों तो यह सब एक धर्मोन्माद सा लगता था, पर जिन्होंने उस आंदोलन का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया है उसने यही निष्कर्ष निकाला है कि स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र की जो अग्रगामी शानदार परंपरा रही है उसमें गणेशोत्सव के प्रचलन ने ही प्राण भरे थे। धर्म के प्रति आस्था और देश के प्रति मर मिटने का पराक्रम इन उत्सवों के ही बीजांकुरों से फूट पड़ा था। संयुक्त बंगाल की राष्ट्रीय जागरूकता के प्रति देश पर मर मिटने की भावना संस्कृति के प्रति सघन आस्था का कारण और इतिहास जो ढूंढना चाहते हैं उन्हें वहां के दुर्गा पूजा समारोह के कारण उत्पन्न उभार की प्रतिक्रिया समझनी होगी। देखने में दुर्गा पूजा एक धार्मिक आवेश जैसा प्रतीत होता है और लगता है इसमें किसी देवी देवता के प्रति भक्ति की भावना ही हलचल मचाती है। किंतु यह भूल नहीं जाना चाहिए कि सामूहिकता के साथ भाव प्रवाह जब भी जुड़ते हैं तो संबद्ध व्यक्तियों पर ही नहीं उस क्षेत्र के वातावरण पर भी छाप छोड़ते हैं। यह छाप उस प्रवाह की दिशाधारा के अनुरूप भली या बुरी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। कहना न होगा कि दुर्गा पूजा की पृष्ठभूमि ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उस समुदाय के द्वारा किए गए महान कृत्यों में परोक्ष रूप से भारी योगदान दिया है। कोई यह कहने की दृष्टता तो नहीं कर सकता कि किसी क्षेत्र, वर्ग या देश में विशिष्टताएं भर देने का श्रेय मात्र धार्मिक आयोजनों को ही है, पर इसमें संदेह नहीं कि यदि वे सुनियोजित हों और उनके पीछे कोई उच्च स्तरीय दिशाधारा जुड़ी हो तो उसका प्रभाव सामान्य न होकर असामान्य ही होता है। गुजरात का उदाहरण सामने है। उस प्रांत की धर्मप्रायणता असाधारण है। मुसलमानों में बोहरा समाज और हिंदुओं में स्वामी नारायण संप्रदाय, वल्लभ कुल गोसाई संप्रदाय आर्थिक दृष्टि से इतने समृद्ध हैं कि उनकी तुलना में मध्यकाल के सुसंपन्न राजा महाराजा भी हल्के पड़ते हैं। गांधी, दयानंद, नरसिंह मेहता, सुदामा जैसे मूर्धन्य संत उसी भूमि में उपजे। धार्मिकता को जीवित रखने में उस प्रांत में अपने ढंग से की जाने वाली अम्बा आराधना का विशेष महत्व है, जो महिला समाज में गरबा के नाम से प्रसिद्ध है। लाखों नर नारी उन आयोजनों से भावभरी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। फलतः पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन पर उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। गुजरात की धार्मिकता की विशेषता पर यदि शोध की जा सके तो प्रतीत होगा कि वैसा वातावरण बनाने में, लोकमानस तैयार करने में इस अम्बा आराधना का असाधारण महत्व है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में राम भक्ति का, रामायण का प्रचलन बहुत है। इन क्षेत्रों में जहां धार्मिक संस्कार पाए जाते हैं, उनमें रामलीला आयोजन से संपन्न प्रभाव को नगण्य नहीं ठहराया जा सकता। जिन प्रांतों में कृष्ण भक्ति प्रचलन अधिक है, उनमें कथावाचकों और संप्रदायों की भी भूमिका रही है। रासलीला मंडलियों ने उस भक्तिभावना के लिए जो क्षेत्र तैयार किया है, उसे स्वल्प नहीं कहा जा सकता है। प्रदर्शनों की उपयोगिता को देखते हुए समाज के मूर्धन्य व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुरूप जन समाज को आकर्षित करने के लिए उनके सरंजाम खड़े करते हैं। एक एक दिन के उत्सव जयंतियों के रूप में अनेकों मनाए जाते हैं। शिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, महावीर जयंती, नानक जयंती आदि की अपने देश में धूम रहती है। संसार में अपने अपने संप्रदायों के संगठनों के प्रवर्तकों की जयंतियां भी समारोहपूर्वक मनती रहती हैं। पौराणिक गाथाओं की स्मृतियों में प्रचलित समारोह भी अनेकों हैं। दिवाली, वसंत पंचमी, होली, विजयादशमी, गीता जयंती आदि के पीछे इतिहास नहीं, उपयोगी प्रेरणा विद्यमान है। परंपरागत सभी उत्सव आयोजनों के पीछे उद्देश्य एक ही है, लोकमानस का उत्साह उभारा जाए और उसे उपयोगी दिशाधारा में नियोजित किया जाए। नवरात्रि पर्व की गरिमा धर्म और संस्कृति के आरंभ काल से मानी जाती रही है। उसे आत्मोत्कर्ष की साधना का विशिष्ट अवसर कहा गया है। भारतीय उपासना पद्धति में सर्वप्रथम स्थान गायत्री महाशक्ति का है। आगम एवं निगम संप्रदायों के आत्मवादी और भौतिकवादी साधक उसी के सहारे दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी, वैदिक और तांत्रिक उपासनाएं करते रहे हैं। अतीत की वापसी के लिए आरंभ किए गए पुनर्जीवन पुनर्निर्माण अभियान में भी उसी पुण्य परंपरा की पुनरावृत्ति करनी होगी। आत्मिक प्रगति के लिए किए जाने वाले साधनात्मक पुरुषार्थ में गायत्री उपासना को स्थान देने दिलाने का प्रबल प्रयत्न करना होगा। बिखराव और भिन्नता की दृष्टि से खान पान, पहनाव उड़ाव जैसे लोक व्यवहार में अंतर रह सकता है, किंतु दर्शन तो हर हालत में एक ही रहना चाहिए। दार्शनिक बिलगांव रहने पर व्यवहार की एकता अति कठिन हो जाती है। धर्मों के प्रयत्न भी चिरकाल से चल रहे हैं, पर उनका प्रतिफल अभी परस्पर सहिष्णुता तक की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता। आए दिन भीतरी बिलगांव के बाहरी लक्षण विग्रह के रूप में उभरते रहते हैं। भारतीयता के अनुयायियों को तत्व दर्शन की एकता बनाए रहने के लिए प्रथम प्रयत्न करना चाहिए। यह कार्य उपासना की धुरी गायत्री को सर्वजनीन बनाकर ही किया जा सकता है। एकता नवयुग का लक्ष्य है। यह एकता उपासना क्षेत्र से आरंभ की जा सकती है। उसका परिणाम इतना तो तुरंत ही होगा कि अपने देश में सर्वत्र फैला पड़ा सांप्रदायिक बिलगांव बहुत हद तक समेटा जा सके। सामूहिक उपासना की इस श्रृंखला के पीछे यह सिद्धांत भी कार्य करते हैं। यह कोई परंपरा नहीं है, वरन आर्ष परंपरा का ही एक साधारण प्रयोग है, जिसके माध्यम से सृष्टा जगत को धर्मनिष्ठ और स्वर्गतुल्य बनाने का अपना संकल्प भी पूर्ण करते जा रहे हैं, साथ ही इस देश और यहाँ के जातीय जीवन में एक अभिनव सामर्थ्य भी पैदा करने का प्रयोजन पूर्ण कर रहे हैं। इसे ब्रह्मवेता का ईश्वरीय निनाद समझा जाए और इस महान प्रयोजन की पूर्ति में संपूर्ण निष्ठा के साथ जुटा जाए, तो यह स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों से कम त्याग और बलिदान की बात नहीं होगी। पराधीनता के पाप से मुक्ति दिलाना एक महत्वपूर्ण कार्य था, भग्न राष्ट्र का पुनर्निर्माण उससे भी बड़ा कार्य है। दैवीय अनुग्रह उसके लिए स्वयं अप्रस्तुत हुआ है। अब अपनी अपनी बात है कि उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ कौन लोग करते हैं और कौन लोग अमृत वर्षा के समय भी औंधे मुंह पड़े पात्र की तरह इस अलभ्य अवसर से चूक कर रह जाते हैं। नैष्ठिक साधना का मूल प्रयोजन। युगसंधि की इस वेला में जागृत आत्माओं के लिए नैष्ठिक साधना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यद्यपि व्यक्ति अपने निजी जीवन में सर्वदा स्वतंत्र और सशक्त है, फिर भी विशाल ब्रह्मांड में गतिशील हलचलों और परिस्थितियों के सम्मुख उसका स्थान नगण्य है। सिर पर खड़े पानी के बादल तक पर उसका अधिकार नहीं, वह उसे अपनी मनमर्जी के अनुसार बरसा नहीं सकता। मौत बुढ़ापे तक को वह रोक पाने में असमर्थ है, परिस्थितियों पर उसका अधिकार नगण्य है। प्रवाहों में वह अपना यत्किंचित बचाव ही कर पाता है। सर्दी उसके बूते रुकती नहीं, कपड़े लादकर, आग तापकर, बिजली से कमरा गर्म रखकर, वह आत्मरक्षा भरकर पाने में आंशिक सफलता पा लेता है। इस स्थिति को देखते हुए नैष्ठिक साधना की अनिवार्यता के संदर्भ में एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि मनुष्य वातावरण और प्रकृति के सामने सर्वथा असहाय असमर्थ है, तो वह किस आधार पर वातावरण में अनुकूल और परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकता है। इसका एक ही उत्तर है कि प्रकट रूप में मनुष्य वातावरण के सामने सर्वथा असहाय असमर्थ भले हो, पर सूक्ष्म प्रवाहों को प्रभावित करने, बदलने और अनुकूल करने की क्षमता मानवीय चेतना में विद्यमान है। जीव ईश्वर का अंश है, मानवीय चेतना ब्रह्मांडव्यापी चेतना का एक भाग है। अंश में अंशी की सारी विशेषताएं मूल रूप से विद्यमान रहती हैं और प्रयत्न पूर्वक वे मूल सत्ता के समान स्तर तक विकसित हो सकती हैं। उसकी प्रखरता बढ़ती रहे तो उसकी विकास प्रक्रिया उसे महात्मा, दिव्यात्मा तथा परमात्मा बनने की स्थिति तक पहुंचा सकती है। जड़ प्रकृति का वैभव विस्तार बहुत है, फिर भी उस पर नियंत्रण चेतना का ही है। शरीर का अस्तित्व एवं क्रियाकलाप तभी तक है जब तक कि उसमें प्राण की सत्ता काम करती है। प्रकृति ब्रह्म की छाया मात्र है, ब्रह्म जगत ही वास्तविक है। प्रकृति जगत की जड़ता पर चेतना की ब्रह्म सत्ता का ही नियंत्रण है। विकसित जीवात्मा ब्रह्म जगत से अपने आप को संबद्ध ही नहीं करते, वरन उसके साथ एकाकार होकर इतने सक्षम भी बन जाते हैं कि प्रकृति प्रवाह में आवश्यक हेर फेर कर सके, वातावरण की प्रतिकूलता का अनुकूलता में बदल सके। योगी और तपस्वी क्रमशः उसी स्थिति की ओर बढ़ने के लिए तप साधना का पुरुषार्थ करते हैं। चेतना के संघात से वातावरण में वांछित परिवर्तन संभव है। अदृश्य जगत में कई बार ऐसी प्रेरणाएं उभरती हैं जिनके आंधी तूफानों में मनुष्यों के मस्तिष्क पत्तों और तिनकों की तरह हिलने लगते हैं। युद्धोन्माद ऐसे ही उभरते हैं। उन दिनों अधिकांश लोग लड़ने की आवश्यकता अनुभव करते और उसके लिए उतारू से दिखते हैं। प्रजातंत्र की लहर एक समय चली और उसने राजतंत्र को संसार भर से उखाड़ फेंकने तथा उसके स्थान पर लोकतंत्रीय शासन स्थापित करने का चमत्कार ही उत्पन्न कर दिया। एक लहर साम्यवाद की उठी, उसने रूस के नेतृत्व में एशिया और यूरोप के अनेक देशों को अपना अनुचर बना लिया। इन दिनों संसार भर के मनुष्यों में से प्रायः आधे लोग साम्यवादी विचारधारा के पक्ष में सोचने और उसको पूरा या अधूरा समर्थन देते हैं। इन प्रजातंत्र और साम्यवाद के विचार प्रवाह को अपने युग की प्रचंड लहरों में गिन सकते हैं। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन साधन प्रधान नहीं, प्रवाह प्रधान था। साधनों ने प्रवाह उत्पन्न नहीं किया था, प्रवाह ने साधन खड़े कर दिए थे। हर्षवर्धन, अशोक आदि राजाओं ने मिलकर बुद्ध को धर्म प्रचारक नियुक्त नहीं किया था। बुद्ध ने ही हवा गर्म की थी और उसकी गर्मी से लाखों सुविज्ञ, सुयोग्य और सुसंपन्न व्यक्ति अपनी आत्माहुति देते हुए चीवरधारी धर्म सैनिकों की पंक्ति में अनायास ही आ खड़े हुए थे। धर्म प्रवर्तकों में से प्रत्येक ने अपने अपने समय में अपने अपने ढंग से वातावरण को गर्म करके अपने समर्थन की भाव तरंगे उत्पन्न की हैं और उस प्रवाह में असंख्य व्यक्ति बहते चले गए हैं। पराधीनता पाश से मुक्त होने वाले देशों में भी आजादी की लहर बही और उसके कारण अनगढ़ ढंग से आंदोलन फूटे तथा अपने लक्ष्य पर पहुंच कर रहे। अदृश्य और सूक्ष्म वातावरण के तथ्य तथा रहस्य को जो लोग जानते हैं, वे समझते हैं कि इस प्रकार के प्रवाह कितने सामर्थ्यवान होते हैं। उनकी तूफानी शक्ति की तुलना संसार की और किसी शक्ति से नहीं हो सकती। रामायण काल के वानरों द्वारा जान हथेली पर रखकर जलती आग में कूद पड़ना जिस प्रवाह की प्रेरणा से संभव हुआ, उसका स्वरूप और महत्व यदि समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि जनसमुदाय को किसी दिशा विशेष में घसीट ले जाने की सामर्थ्य सूक्ष्म वातावरण में भी इतनी है जिसे साधनों के सहारे खड़े किए गए आंदोलनों से कम नहीं अधिक शक्तिवान ही माना जा सकता है। युग निर्माण योजना का एक पक्ष आंदोलन परक है, जो एक शब्द में विचार क्रांति अभियान का वह स्वरूप है जिसकी रूपरेखा, जानकारी और प्रेरणा सर्वसाधारण को बहुत समय से दी जाती रही है, जिसके लिए सामर्थ्य भर प्रयत्न किया जाता रहता है। दूसरा पक्ष प्रस्तुत प्रयोजन के लिए सूक्ष्म वातावरण में आवश्यक गर्मी और तेजी उत्पन्न करना है। जनसमर्थन और जनसहयोग के लिए प्रचार साधनों पर उतना निर्भर नहीं रहा जा सकता जितना कि वातावरण के अनुकूलन पर। सूक्ष्म जगत का प्रवाह यदि सहयोगी बन रहा हो तो अभीष्ट प्रयोजन में सफलता प्राप्त करने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। अध्यात्म विद्या में सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म वातावरण का महत्व इस संसार के समस्त साधनों में सर्वोपरि माना गया है। युग परिवर्तन के लिए, वातावरण के अनुकूलन के लिए हमें अध्यात्म विज्ञान के अनुरूप प्रचंड प्रयास करने होंगे। इतना बड़ा कार्य उसी दिव्य शक्ति के माध्यम से संपन्न हो सकेगा। विशिष्ट आध्यात्मिक उपचारों की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न करके भी वातावरण बदला जा सकता है। प्रखर प्रतिभाएं अपनी प्राण शक्ति से युग को बदलती हैं। अवतारी महामानव समय के प्रवाह को उलटते हैं। ठीक इसी प्रकार तप साधना की चेतनात्मक प्रचंड ऊर्जा सूक्ष्म जगत को परिष्कृत करके उसे इस योग्य बना सकती है कि सुख शांति की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगें और उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं दैवीय अनुग्रह की तरह उमड़ती चली आएं। व्यक्ति विशेष की तपश्चर्या और सामूहिक अध्यात्म साधना के यदि प्रबल प्रयास हो सके तो वातावरण बदलने के चमत्कार उत्पन्न हो सकते हैं। सूक्ष्म वातावरण का परिशोधन करने के लिए अध्यात्म विज्ञानियों द्वारा कतिपय दिव्य उपचार समय समय पर किए गए हैं। इनके प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। रावण काल के विक्षुब्ध वातावरण को समाहित करने का कार्य लंका विजय के उपरांत भी शेष रह गया था। इसके लिए भगवान राम ने दशाश्वमेध घाट पर 10 अश्वमेधों की संकल्प श्रृंखला पूरी की थी। कंस, दुर्योधन, जरासंध जैसे असुरों के न रहने पर भी महाभारत काल के विक्षोभ वातावरण में भरे रहे। भगवान कृष्ण ने उसका समाधान आवश्यक समझा और पांडवों से राजसूय यज्ञ कराया। महर्षि विश्वामित्र अपने समय की असुरता को दुर्बल बनाने के लिए जो वृहद यज्ञ रच रहे थे, उसका पता असुरों को चल गया और वे तारका, सुबाहु, मारीच के नेतृत्व में उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण करने लगे। राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए जाना पड़ा था। ऐसे समाधान उपचारों में यज्ञ प्रक्रिया का बहुत महत्व रहा है। यज्ञों में अग्निहोत्र की तरह ही जपयज्ञ भी है। अग्निहोत्र में साधन चाहिए पर जपयज्ञ व्यक्तिगत साधना से भी संपन्न हो सकता है। यज्ञ तो सामूहिक ही होते हैं, उससे होताओं की सम्मिलित साधना का चमत्कार देखने को मिलता है। जपयज्ञ को जब अनेक जपकर्ता संकल्प पूर्वक समाहित होकर करते हैं तो उससे भी सम्मिलित शक्ति उत्पन्न होती है। ऐसी सामूहिक साधनाएं पुरश्चरण कहलाती हैं। तपश्चर्या युक्त सामूहिक संकल्पों के द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए गए पुरश्चरण भी वातावरण में अभीष्ट अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। वैयक्तिक विशिष्ट तपश्चर्याएं अपनाकर आत्मविकास और व्यापक परिस्थितियों में उपयोगी परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं। हिमालय पर अभी भी ऐसी दिव्य आत्माएं विशिष्ट तप साधना में संलग्न हैं और समय समय पर अपनी आत्मिक क्षमता से वातावरण के अनुकूलन का यथासंभव प्रयत्न करती है। हम समझ भले ही न पाएं पर उसका उपयोगी लाभ मिलता है। यदि ऐसा न होता तो वातावरण की विकृति बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पर पहुंच गई होती कि महाविनाश के अतिरिक्त वहां कुछ भी दिखाई न देता। श्रेष्ठता का जो प्रकाश इन दिनों दिखाई देता है, वह आसुरी आक्रमणों से कब का लुप्त हो गया होता। अस्तु, विविध साधकों को उनकी सामर्थ्य के अनुरूप अतिरिक्त रूप से भागीरथ तप साधना के संकल्प सौंपे गए हैं। संकल्प उन साधकों को सौंपे गए हैं जो पिछले कई वर्षों से युग निर्माण योजना के देव परिवार से संबद्ध हैं। उन्हें समय समय पर वर्तमान परिस्थितियों की विषमताओं और महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया के संबंध में बताया समझाया जाता रहा है। यूं उन्हें इस संक्रमण वेला में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। देव परिवार के परिजन भलीभांति जानते हैं कि इन दिनों सूक्ष्म जगत में नवसृजन की भूमिका निभाने वाली वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। उससे जो दिव्य अनुदान बरसने वाले हैं या बरस रहे हैं, वे सृजन की सत्प्रवृत्तियों को सिंचित, पोषित और अंकुरित फलित करेंगे। वर्षा ऋतु आरंभ होते ही हर क्षेत्र में नई हलचल दिखाई पड़ती है। तवे सी जलती जमीन पर मखमली कालीन बिछी दिखती है। बिना बोई घास अपने आप ही उगती और हरियाली से धरातल को सुरम्य बनाती है। जलचर संतोष की सांस लेते हैं, उन्हें कलोल करने का अवसर मिलता है। सूखे हुए तालाब भर जाते हैं और उनके आश्रय में रहने वाले जीवों को गाते फुदकते देखा जा सकता है। घटा गरजती है और मोर नाचते हैं। पेड़ पौधे उगते और बढ़ते चले जाते हैं। दादुरों का सामगान सुनते ही बनता है। इन दिनों अंतरिक्ष में नवसृजन की भूमिका निभाने वाली वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। उसने अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को अनुप्राणित किया है। चेतना की अपनी दुनिया है जो आंखों से तो नहीं दिखती पर विचारणा और भावना के रूप में अपने प्रचंड अस्तित्व का प्रमाण परिचय पग पग पर देती है। जनमानस चिरकाल से दुर्भिक्ष पीड़ित धरातल की तरह उदासी से भरा था। लगता था समय काटना ही उसके भाग्य में है। अंधेरे में लगता था सर्वत्र अस्त व्यस्तता, नीरसता और निष्क्रियता का ही साम्राज्य है, पर प्रकृति ने करवट बदली तो परिस्थितियां इस तरह उल्टी मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमाए और अप्रत्याशित चमत्कार प्रस्तुत कर दिया। इन दिनों युगांतरीय चेतना घनघोर वर्षा की तरह बरसती देखी जा सकती है। जनमानस पर छाई हुई उदासी और निराशा में अद्भुत परिवर्तन हुआ है। उज्ज्वल भविष्य की चर्चा चल पड़ी है और नवसृजन में किसका कितना योगदान हो सकता है उसी की रंग बिरंगी योजनाएं बन रही हैं। जिस संकीर्ण स्वार्थपरता ने जन जन को कृपण और निष्ठुर बना रखा था उसके पैर इतनी जल्दी इतनी तेजी से उखड़ सकते हैं इसकी कल्पना भी नहीं थी, पर सूत्रधार को क्या कहा जाए। इसके संकेतों से पटाक्षेप होने और नए दृश्य प्रस्तुत होने में देर नहीं लगती। बड़ी हलचलें मूर्धन्यों से आरंभ होती हैं। समयानुसार उनका प्रभाव और परिणाम जनसाधारण के सामने आता है। युग निर्माण परिवार के परिजनों को चेतनाजगत के मूर्धन्य कहने में कोई अत्युक्ति नहीं। सामान्य जन पेट प्रजनन के अतिरिक्त कदाचित ही और कुछ सोच पाते हैं। उनकी गतिविधियों में वासना और तृष्णा की पूर्ति के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं। चिंतन पर लोभ और मोह की छाया रहे तो प्रयास में उत्कृष्टता का समावेश हो नहीं सकेगा। परिस्थितियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, विमना स्थिति की उपज भर होती हैं। मकड़ी जाले को तांती भी है और इच्छानुसार उसे समेटकर उदरस्थ भी कर लेती है। मनुष्य का अंतराल बदले तो बाहर का सारा जंजाल उलटकर कुछ से कुछ होते देखा जा सकता है। यह प्रसंग कभी दार्शनिकों के मुंह से सुने जाते थे, पर उनकी यथार्थता जांचने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। युगशिल्पियों की भावनाओं, विचारणाओं और गतिविधियों का जो दौर इन दिनों चल रहा है उसे देखते हुए यह स्वीकार करने में किसी को भी कठिनाई नहीं हो सकती है कि परिस्थितियां तो पोशाक भर हैं, जीवत तो अंतराल में रहती है। युगांतरीय चेतना बरस तो बहुत दिनों से रही थी, पर उसकी मात्रा कभी ओस जितनी, कभी फुहार जैसी रहती थी। जब उसने अपनी प्रखरता घटाटोप जैसी विकसित की है तो उल्लास भी अनायास ही उभरा है। अग्रगामी उस आगमन की ध्वजा उड़ाते हुए प्रथम पंक्ति में चल रहे हैं। समूचे देव परिवार में नवसृजन के लिए कुछ करने का जो मनोरथ चिरकाल से चल रहा था, उसने इन दिनों साहस भरे प्रयास से अपना स्तर बदला है। सोचना करने के रूप में परिवर्तित होते देखकर यह अनुमान लगता है कि युग चेतना ने जीवंतों को सहमत बनाकर ही नहीं छोड़ा, वरन उन्हें गतिवान होने के लिए विवश कर दिया। आश्चर्यजनक होता है कि व्यस्तता, दरिद्रता, चिंता आदि के बहाने जो चिरकाल से गढ़ते चले आ रहे थे और विवशता, असमर्थता जैसे शब्दों से अपनी कृपणता को संजोए रहते थे, उन्हें रातों रात क्या हो गया। उन्हें इतनी फुर्सत कहां से आ गई कि नित्य कर्मों की तरह सृजन प्रयोजनों को प्राथमिकता देने लगे। समुद्र बादलों को देता है, बादल धरती को, हिमालय नदियों को देता है, नदियां खेतों को, धरती पौधों को देती है, पौधे प्राणियों को, अमृत जागृतों पर बरसता है, जागृत उस उपलब्धि को जन जन पर बिखेर देते हैं। यह बिखराव और वितरण इन दिनों इस चुस्ती मुस्ती से चल रहा है कि नवयुग के आगमन में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती। संकीर्ण स्वार्थपरता का उदार परमार्थ परायणता में बदल जाना ही युग परिवर्तन है। इसका आरंभ मूर्धन्यों से हुआ है, अंत में उस दिव्य अनुदान से जन जन को लाभान्वित होते देखा जा सकेगा। उसे इन्हीं आंखों से देखने के लिए अपने पाठकों में से अधिकांश जीवित रहेंगे। जागृत आत्माओं पर, मूर्धन्य जनों पर बरसने वाला यह अनुदान उन्हें नवसृजन की प्रवृत्तियों में तन्मयतापूर्वक संलग्न कर रहा है। उसके सत्परिणाम शीघ्र ही देखने में आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।